ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी रचित तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय है। इसमें हमने पांच भाव संबंधी सूत्र पढ़ा था। औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्वमौदयिक पारिणामिकौ च। हमने ये देखा था कि ये जो औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक औदयिक और पारिणामिक ये पांच जीव के असाधारण भाव है जो अन्य में नहीं पाए जाते हैं, जीव में पाए जाते हैं, इसलिए इनको असाधारण भाव कहा था। उसकी बहुत विस्तार से हमने चर्चा भी की है। हम अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने ये बात देखी थी कि पारिणामिक भाव तो जीव का स्वभाव भाव है। स्वभाव होता है वो अनादि अनंत होता है और उसमें कोई कर्म की निमित्त की अपेक्षा नहीं होती है। कर्म के बिना जो होता है वो पारिणामिक भाव जीव का स्वभाव है। तो ये पारिणामिक भाव संसारी और मुक्त सभी जीवों में पाया जाता है। औदयिक भाव हमने देखा, वहां कर्म के उदय की अपेक्षा है और वह सभी संसारी जीवों के पाया जाता है, अरिहंतों के भी होता है। क्षयोपशमिक भाव हमने देखा था कि सभी छद्मस्थों के क्षयोपशमिक भाव होता है, क्योंकि क्षयोपशमिक ज्ञान, क्षयोपशमिक दर्शन और क्षयोपशमिक दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य तो अनादि से ही होता है, बारहवें गुणस्थान तक चलता है। क्षायिक भाव हमने देखा था कि अलग अलग गुणों का जो क्षायिक भाव है वो अलग अलग गुणस्थानों में प्रकट होता है। जैसे क्षायिक सम्यक तो चौथे से लेकर आगे प्रकट होता है, और जब प्रकट होता है तो क्षायिक भाव ऐसा भाव है कि एक बार प्रकट होता है तो एक एक समय वाला, परंतु अनंत काल तक रहता है, क्योंकि वहां कर्मों के क्षय की अपेक्षा है। एक बार कर्मों का क्षय होने पर दोबारा उसका कोई औदयिक भाव या अन्य क्षयोपशमिक भाव नहीं होता। ये क्षायिक भाव की बात है। क्षायिक सम्यक तो होता है चौथे में, क्षायिक चारित्र होता है जब चारित्र मुनि का पूर्ण क्षय हो जाता है बारहवे में, और क्षायिक ज्ञान कब होता है हमने देखा था, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक वीर्य आदि, हाँ तेरहवे गुणस्थान के पहले समय से। अब रहा एक औपशमिक भाव। औपशमिक भाव है वो श्रद्धा और चारित्र गुण का औपशमिक भाव पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। तो ये भाव भी जो औपशमिक सम्यक्त्व है, अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले धर्म की शुरुआत होती है, सम्यक दर्शन होता है, तो उसके औपशमिक सम्यक्त्व होता है जिसको हम प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। और औपशमिक चारित्र, कल बात आई थी ना उपशम श्रेणी वाला जी, चारित्र मुनि का उपशम करते करते उपशांत मोह नामक कौन से गुणस्थान में पहुंचता है, ग्यारहवें गुणस्थान में। तो वहां उपशम चारित्र पाया जाता है, चारित्र का औपशमिक भाव पाया जाता है। इस तरह से हमने भावों की चर्चा देखी थी, कौन से कितने भाव होते हैं उसकी भी चर्चा की थी। कल हम जो पढ़ रहे थे 179 पृष्ठ हिंदी में, यहां लिखा है ये पांच भाव क्या बतलाते हैं, उसको हमने पढ़ना शुरू किया था। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो कि पारिणामिक भाव क्या बताता है कि जीव में एक अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव है। स्वभाव है तो स्वभाव का नाश कब हो जाएगा? हाँ भाई, नहीं नहीं, आप भाई साहब को मैंने पूछा क्या स्वभाव का भी नाश हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। तो स्वभाव तो उसी को कहते हैं जो अनादि अनंत पाया जाता है, और पर्याय में कैसा भी विभाव क्यों न हो, स्वभाव का कभी नाश नहीं होता। और जीव का जो स्वभाव है उसका जीव स्वयं लक्ष्य करे तो पर्याय में भी स्वभाव पर्याय प्रकट होती है। दूसरे पॉइंट पर लिखा है, जीव में अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य स्वभाव होने पर भी, भाई साहब का कल प्रश्न था ना कि स्वभाव शुद्ध है तो पर्याय में विकार क्यों हो रहा है, तो ऐसा होने पर भी उसकी अवस्था में विकार है। विकार कहाँ है? स्वभाव ने नहीं कूद गया, अवस्था में है। और अवस्था कितने काल तक रहती है बहन? एक समय, एक एक समय करके प्रवाह रूप से भले अनेक समयों तक रहे, फिर भी प्रत्येक अवस्था एक समय की होती है। तो विकार अभी अवस्था में है परंतु स्वभाव कुछ बदला नहीं है। अवस्था में विकार होने पर भी स्वभाव शुद्ध है और उस शुद्ध स्वभाव का लक्ष्य कर सकते हैं। विकार को गौण करके पर्याय का लक्ष्य छोड़ के हम स्वभाव पर लक्ष्य केंद्रित कर सकते हैं। ये तो हमारे ज्ञान की ऐसी कैपेसिटी है कि हम किसी को मुख्य कर सकते हैं, किसी को गौण कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, ये जो अवस्था में विकार होता है ये कौन सा भाव देखा हमने? औदयिक भाव। तीसरा पॉइंट है, जड़ कर्म के साथ जीव का अनादिकालीन संबंध है। देखो, कर्म और जीव अनादि से ही बंधी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले शुद्ध था और बाद में बंधा है। यदि ऐसा मानेंगे तो सिद्ध भी अभी शुद्ध है तो भविष्य में कभी बंध जाएंगे, ऐसा प्रसंग हो सकता है, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो ये बात क्या कहते हैं कि जीव और कर्म का, कर्म कौन से कर्म? जड़ कर्म, आठ कर्म, इनका अनादिकाल से ही संबंध पाया जाता है। और जीव अपने ज्ञाता स्वभाव से च्युत होकर जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है। ज्ञाता स्वभाव से च्युत होने ने अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानना, नहीं देखना, उसको नहीं श्रद्धा करना, उसको भूल जाना। ऐसा नहीं कि पहले उसने जाना था और बाद में च्युत हो गया, उसको शास्त्र में च्युत नहीं कहते। उसको अनादि से जाना ही नहीं है, उसी को कहते वो स्वभाव से च्युत हुआ था। हम गिरना किसको कहते हैं? जो पहले ऊपर था और बाद में गिर गया तो हम कहते हैं वो गिर गया, च्युत हो गया। परंतु ये जीव कैसा है? अनादि से ही मिथ्या दृष्टि है, अनादि से ही उसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है। ये जड़ कर्म की ओर झुकाव करता है जिससे विकार होता है। यानी कर्मों का उदय है परंतु जीव उस कर्म के उदय में, उसके फल में जुड़ जाता है। जुड़ जाना का अर्थ होता है उसमें राग द्वेष मोह करता है, परंतु कर्म उसको विकार भाव नहीं कराते, कर्म के कारण नहीं। इसका अर्थ क्या है? जहां जीव विकार करता है उसी समय वहां कर्म का उदय पाया जाता है। परंतु ऐसा नहीं कि कर्म का उदय आया है और इसलिए उसने जबरदस्ती जीव को विकार कराया है, ऐसी पराधीनता नहीं है। जीव मिथ्यात्व करता है, राग द्वेष करता है, वो स्वयं स्वतंत्रता से ये विभाव भाव करता है। और जीव सम्यक्त्व प्राप्त करता है, वो भी स्वयं स्वाधीनता से प्राप्त करता है। दूसरा ना उसको विकार करा सकता है और ना ही कोई अन्य व्यक्ति या कर्म उसको सम्यक् दर्शन दिला सकते हैं। भगवान भी सामने क्यों न हो, तीर्थंकर, फिर भी वो हमें सम्यक् दर्शन नहीं दिला सकते। कोई ऐसे कहते ना, आप हमारी शरण में आ जाओ, हम आपको सम्यक दर्शन दिला देंगे, क्यों बिन? तो ऐसे फंसना नहीं। हाँ देखो, दुनियादारी में तो हम इतने होशियार हैं, इतने चौकन्ना रहते हैं, परंतु जब ये जो देव शास्त्र गुरु की बात आती है या मोक्ष मार्ग की बात आती है, कोई कुछ भी कहे और हम मान लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लौकिक में तो हम कितनी होशियारी बरतते हैं। तो ऐसा यहां भी होना, क्योंकि लौकिक में भले कोई हमें ठगाए फंसाए तो भी अधिक से अधिक क्या होगा, पैसे का नुकसान होगा, या कोई अपने कोई चीज लूट लेगा, घर लूट लेगा, और क्या होगा। परंतु यहां जो ये कुगुरु या जो अन्य खोटा उपदेश है, वो तो हमारे सारे ही भव लूट लेते हैं। ये भव तो चला ही जाता है, अनंत भवों का आगे वो चक्कर चलता रहता है, क्योंकि ये मनुष्य भव अभी खो जाएगा और हम न जाने कहां ऐसे परिणाम कर बैठेंगे कि नरक निगोद में जा टपकेंगे। तो एक बार वो एकेंद्रियों में और निगोद में जाते हैं तो वहां से बाहर आना अत्यंत मुश्किल बात है। इसलिए हमें तो और अधिक चौकन्ना होना चाहिए कि ये हमारी श्रद्धा में तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही ना, कि हम चाहे वहां माथा टेके और चाहे जो कहे वो हाँ जी ऐसा मान, ये नहीं होनी चाहिए। परीक्षा करके उसका स्वीकार होना ही चाहिए। अब कहते हैं कर्म के कारण विकार नहीं होता, यह भी औदयिक भाव सिद्ध करता है। औदयिक यानी कर्म के उदय के समय में होने वाला, परंतु उदय उसको जीव को भाव कराता है ऐसी बात नहीं है। जीव का भाव जीव में और कर्म का उदय कर्म में, दो भिन्न द्रव्य है, वो एक दूसरे का कुछ कर ही नहीं सकते। वो क्यों नहीं कर सकते इसकी बात अपनी द्रव्य गुण पर्याय के प्रकरण में चलेगी। चौथे पॉइंट पर बताते हैं जीव अनादिकाल से विकार करता हुआ भी जड़ नहीं हो जाता। हमने देखा था ना जीव का जो क्षोभम ज्ञान है, भले वो निगोद पर्याय में चला जाएगा तो भी जो उसका भी वहां कौन से ज्ञान है कलाबिन, निगोद जीवों के ज्ञान कौन सी चल रही वहां ज्ञान की पर्याय, हाँ हाँ थोड़ा उसको हम क्या कहेंगे मतिश्रुत ज्ञान यानी कुमति और कुश्रुत, उसको अज्ञान भी कहते हैं या कुज्ञान भी कहते हैं। तो निगोद वाले जीवों को भी ज्ञान का थोड़ा ना थोड़ा अंश तो प्रकट है ही, बिल्कुल वो जड़ हो जाए अचेतन हो जाए ऐसा कभी तीन काल में नहीं बनता। यानी जो जो जीव है उसका जानना 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 कार्य हर समय चलता है। एक इंद्रिय में जाता है तो बहुत अल्प जानता है, परंतु जानने का मिट नहीं जाता। तो ये जो उसका विकास आंशिक विकास अनादि से ही बना रहा है, ये दान लाभ भोग उपभोग वीर्य का विक्षोपम उसमें भी थोड़ा अंश प्रकट होता ही है, तो इसको कहते हैं उसका जो क्षोभम भाव है वो अनादि से ही चला आ रहा है। अब पांचवे पॉइंट पर बताते हैं कि आत्मा का स्वरूप यथार्थ समझकर, क्या लिखा है यथार्थ समझकर, सभी जो अन्य मति भी है वो भी कहते हैं आत्मा है शुद्ध है बुद्ध है, फिर भी उसको जो प्राप्त करने का जो स्वरूप या उसका मार्ग बताते हैं, सात तत्वों का जो स्वरूप बताया है और सात तत्वों में भी आश्रय बंध संवर निर्जरा से रहित ऐसा जो अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य रूप भाव पारिणामिक भाव बताया है, तो आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर, क्योंकि हम अन्यथा समझे आत्मा जैसा नहीं है ऐसा उसको समझे और ध्यान करे तो आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा। हम अपने को मनुष्य मानकर बैठेंगे, हम है तो जीव, एक मैं जीव हूं जो चैतन्य गुण का धारक हूं, अरूपी हूं, असंख्यात प्रदेशी एक अखंड द्रव्य हूं, इसके बदले मैंने मुझे क्या मान लिया, ये शरीर मैं हूं या शरीर वाला मैं हूं। कोई तो शरीर को ही मैं मान लेते हैं और कोई तो मैं और शरीर मिलके मैं हो गया ऐसा मान लेते हैं, और कोई जीव मानता है ये जो विकार हो रहे ना पुण्य के परिणाम हो रहे मैं उस रूप हो गया हूं, मैं बहुत श्रद्धालु हूं मैं बहुत क्रोधी हूं, ऐसा पर्याय जितना अपने को पूरा मान लिया है ये उसने आत्मा को यथार्थतया नहीं जाना नहीं पहचाना। भगवान ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया है वैसा यदि वह समझता है जानता है तो कहते हैं आत्मा का स्वरूप यथार्थतया समझकर, जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, पारिणामिक भाव का आश्रय लेना यानी क्या, उसी को स्वरूप से स्वीकार करके वहां ज्ञान की एकाग्रता करना। वो जो पारिणामिक भाव है जिसको हमने अनादि अनंत एक रूप शुद्ध चैतन्य स्वभाव कहा है, जो त्रिकाल तीनों काल एक सदृश परिणाम है, अब उसका लक्ष्य करके हम जानते रहेंगे। कल भाई साहब ने प्रश्न पूछा था कि हम रेस्पिरेशन पर ध्यान करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा, आपका प्रश्न था ना, तो रेस्पिरेशन पर, ये रेस्पिरेशन किसकी क्रिया चल रही है, शरीर की जड़ की, तो पर को जानते, जड़ है और वो पर भी है, तो पर को जानते जानते हमें अपना अनुभव कैसे होगा, ख्याल है ना। और वहां जो रेस्पिरेशन को देख रहे हैं अपने को आत्मा मानकर देख रहे हैं कि मनुष्य मानकर देख रहे हैं, ये बात है ना, तो ये आत्मा को यथार्थतया नहीं समझा। कोशिश तो हरेक की यही होती है कि हमें आत्मा का अनुभव हो, हमें सम्यक दर्शन हो और हमारा मोक्ष मार्ग प्रकट हो, परंतु भोले जीव है, उनको ये बात समझ में नहीं आती और यहाँ वहाँ हम दौड़ धूप करते हैं, क्योंकि हम क्या कहते, सुख चाहे दुख तय भयवंत, दुख सहा नहीं जाता, कुछ न कुछ करना चाहते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी मेडिकल डॉक्टरों को पता है कि कोई ये जो बर्न होता है, इंडिया में तो बहुत चलता है, कोई मान लेते उबलते हुए पानी से वो जल गया हाथ या पैर, तो जो सूझे वो कर देता है, कोई स्याही पर पटक देगा, कोई और क्या क्या करेगा, तो ये दुख से डर कर कुछ न कुछ उपाय करता है, परंतु वो झूठा ऐसा उपाय करता है कि और वो उसमें इन्फेक्शन वगैरह और कुछ होता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। ऐसे ये जो कुछ न कुछ करना चाहता है और वो चाहने के लिए समझता तो नहीं है सही रास्ता क्या है, और कुछ करने धरने की क्रिया में मान लेता है कि आई एम ऑन द राइट वे पाथ, और वो उसका वो गलत चक्कर चलता रहता है। इसलिए क्या कहा, आत्मा को यथार्थ समझकर, तो कैसे समझना, हम तो नहीं समझ रहे तो क्या कैसे समझना, कि जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है, ऐसे जो अरिहंत भगवान है, हमारे आचार्य है, ज्ञानी अन्य जीव है, जो उपदेश के लिए कोई मुनि होना चाहिए ऐसी बात नहीं, कोई पांचवें गुणस्थान वाला, चौथे गुणस्थान वाला, जिसने आत्मा का अनुभव किया है वही सच्चा उपदेश दे सकता है। तो उस उपदेश के अनुसार या आगम के अनुसार आत्मा को समझकर, ये तो अभी हमने शास्त्रों के द्वारा समझा है, शब्दों के द्वारा समझा है, फिर क्या होना है, जब जीव अपने पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है। शास्त्र में से तो सात तत्व कैसे है, मैं स्वयं पारिणामिक भाव कैसा हूं, इसको तो शास्त्र में से ज्ञानी के उपदेश से जानना है। इतना जानने से हो गया काम नहीं, ये तो हमने आत्मा कैसा है इसको जाना, अभी हमें आत्मा को जानना है। तो हमें किसी को जानना है तो हम क्या कहते हैं, उसकी तरफ देखेंगे ना, और हमें अपने आप को जानना है तो क्या है, अपने को जानना है। ज्ञान तो है हमारे पास, और ज्ञान का स्वभाव कैसा है, वो सबको जाने ऐसा है, स्व को भी जान सकता है और पर को भी जान सकता है। तो ज्ञान पर की तरफ है तो पर को जान रहा है, हमें स्व को जानना है तो क्या होगा, उपयोग जो ज्ञान उपयोग यानी ज्ञान का जो पर्याय जो है उसका जो स्वन्मुख हो जाएगा तो हम अपने को ही जानने लगेंगे। तो इसलिए कहते हैं पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है, यानी ये जो एक रूप भाव है तो ये पांचों ही असाधारण भाव कहे हैं। तो हम जो मिथ्या दृष्टि है वो औपशमिक भाव का आश्रय ले कि नहीं ले, आश्रय ले कि नहीं ले। हाँ अतुल भाई आप प्रश्न सुनना, मिथ्या दृष्टि जीव के पास है ना औपशमिक भाव, कितने हैं, है ही नहीं। अच्छा तो है ही नहीं तो उसका आश्रय लेने का सवाल ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि क्षायिक भाव का आश्रय ले कि नहीं ले, उसके पास है नहीं तो भगवान के क्षायिक भाव का आश्रय ले कि नहीं ले, भगवान के केवल ज्ञान का आश्रय लेगा तो, उसका ध्यान करेगा तो, वो पर के ध्यान से अपना अनुभव नहीं हो सकता। तो अभी उसके पास मिथ्या दृष्टि के पास तीन भाव है, कौन से है, क्षावशमिक भाव है, औदयिक भाव है और पारिणामिक भाव है। तो इसमें से हमें आश्रय ने एकाग्र होना है, तो एकाग्र होना है अभी हम अल्प सा थोड़ा जान रहे क्षयोपशमिक है, हाँ तो ये थोड़ा सा ज्ञान हमारा है तो किसको जानना, उसको जानते रहेंगे ना। क्षयोपशमिक भाव को जानने से हमको आत्मानुभव होगा कि नहीं होगा, या औदयिक भाव को जानते रहेंगे, क्या हो रहा है, हमें पुण्य के परिणाम हो रहे हैं तो पुण्य को जानते जानते आत्मा का अनुभव होगा कि नहीं होगा, या पुण्य करते करते औदयिक भाव करते करते वो औपशमिक भाव सम्यक दर्शन प्रकट होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो अभी उसका उपाय क्या है, तो हमें ऐसा भाव चाहिए। देखो ये सारे अन्य जो भाव है ना वो क्षण वाले हैं और हमको उसको जानते रहना है, एक समय के जानने से नहीं काम चलेगा। जैसे हम वो ग्लास आते हैं ना, कॉन्सेंट्रेट करते उसमें से, उसमें प्रकाश आता है मैग्नीफाइंग, और उसके वो एकत्रित होते हैं सूरज की किरणें, तो कागज भी जल जाता है, तो ऐसा पकड़ा और छोड़ दिया तो होता है क्या, तो थोड़े टाइम वहां रुकना पड़ेगा कि नहीं। वैसे ही यहां हम जब अपने आप पर एकाग्र हो जाते हैं तो एक छोटे से अंतर्मुहूर्त तक एकाग्र हो जाए तो आत्मा का अनुभव हो जाएगा। इसलिए ये सभी पर्याय कैसी है, क्षण क्षण वाली है, तो उसका लक्ष्य करने से हमारा कुछ नहीं होगा। तो ऐसा हमें कोई भाव चाहिए कि जो एक जैसा हो और हर समय हो। तो ऐसा कौन सा है, शुद्ध चैतन्य मय ऐसा परम पारिणामिक भाव। तो उसके आश्रय से औदयिक भाव का दूर होना प्रारंभ होता है। यानी क्या होता है, देखो हमने ज्ञान कहाँ लगाया, पारिणामिक भाव पर। तो औदयिक भाव दूर होता है, कौन सा औदयिक भाव पहले दूर होगा, देखो यहां औदयिक भाव मिथ्या दृष्टि है, अभी उसने आत्मा का आश्रय कभी नहीं किया है। हम पहले इस पर जाते हैं, ये भावों पर, और फिर इस पर अपने विषय पर आ जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि के पास इन पांच भावों में से कौन से भाव नहीं है, हाँ अतुल जी, क्षायिक भाव नहीं है, और कौन सा नहीं है, औपशमिक भाव भी नहीं है उसके, क्योंकि वो सम्यक तो नहीं ना उसका, मिथ्या तो नाम का पहला गुणस्थान चल रहा है, तो उसके ना औपशमिक भाव है ना क्षायिक भाव है। क्षौपशमिक भाव है कि नहीं उसके पास, कौन सा क्षौपशमिक भाव है, मिथ्या दृष्टि को कौन सा ज्ञान है, कुमति ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान है। हो सकता है किसी जीव को कुअवधि ज्ञान भी होगा, तो ये तीन पॉसिबिलिटीज है। और उसका दर्शन जो है चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, यहां अवधि दर्शन इसलिए नहीं लिखा कि कुअवधि के साथ शास्त्र में गोमठ सारादि ग्रंथों में वो जो अवधि दर्शन लगाते हैं वो तो सुअवधि दर्शन के साथ लगाते हैं, विभंग ज्ञान ने कुअवधि दर्शन को अवधि ज्ञान के साथ उसको नहीं लेते, डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आपका प्रश्न है मिथ्या दृष्टि को अचक्षु दर्शन कैसा होता है, सम्यक दृष्टि को कैसा होता है, अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं, इंद्रिय के बगैर जाने उसको नहीं, चक्षु इंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों के द्वारा जो जानने का कार्य होता है, वो जानने के पहले जो होता है सामान्य अवलोकन, उसको कहते हैं दर्शन। तो एक इंद्रिय जीव कितने इंद्रियों के द्वारा जानता है, एक चक्षु इंद्रिय के द्वारा, तो सॉरी एक स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा। तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो जान रहा है उसके पहले जो होता है वो अचक्षु दर्शन है, ख्याल में है? तो ये बात हमने देखी थी, क्षौपशमिक भाव तो उसके तीन कुज्ञान है, दो दर्शन है, और दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इसके भी क्षौपशमिक भाव होते हैं। अब ये प्रश्न उठ रहा था हमारा, औदयिक भाव कौन कौन से है मिथ्या दृष्टि को, हमने औदयिक भाव 21, अभी हम फिर गिनाएंगे इसमें से 21 भाव, परंतु यहां आपके समझने के लिए बोर्ड पर भी लिखे हैं। क्या क्या लिखा है, चार गति, चार कषाय, तीन वेद। अब ये अनेक जीवों की अपेक्षा लिखा है, एक जीव को एट ए टाइम कोई एक ही गति होगी, हाँ। तो ये तीन वेद, छह लेशा, और चार कौन कौन से, मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्धत्व। असंयम यानी अविरत है ना, वो कल आपने देखा था पहला दूसरा तीसरा और चौथा गुणस्थान सभी कैसे है, अविरत है, असंयम के गुणस्थान है, वहां कोई संयम नहीं है। तो कोई मिथ्या दृष्टि जीव मुनि दीक्षा लेकर वन में एक जाएगा, क्या पूछा मैंने, कोई मिथ्या दृष्टि जीव बिल्कुल जैसा शास्त्र में वर्णन किया है ऐसे ही दीक्षित होकर वन में चला जाएगा, तो उसको कितने कितने भाव है औदयिक वाले, हाँ भाई आप, हाँ पीछे आपको पूछ रहे, हाँ इसमें से घटित करना है। अभी जो मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, शिल्पा जी आप लगाना इसमें से, मिथ्या दृष्टि मनुष्य है, एक जीव है ना, तो उसको एक गति औदयिक भाव होगा, चार कषाय, यानी उसमें से एक कोई कषाय एट अ टाइम, हम चारों कषाय भी गिनेंगे उसको, हाँ एक कोई तो वेद होगा तीन वेदों में से, हाँ छह लेशा है एट अ टाइम एक लेशा होगी, ठीक है, हाँ मिथ्यात्व है और अज्ञान है, नहीं 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 हमने तो बोला है कि मुनि दीक्षा लेके गया है, हाँ आप क्या कहते हैं, नहीं नहीं उनको बोलने दो ना भाई, वो दूसरों के मत से थोड़ी चलेंगे। हाँ आप क्या कहते हैं, आप जरा मदद करना। उन्होंने त्याग कर दिया, घर का त्याग किया है, कपड़े का त्याग किया है, रेगुलर दीक्षा ली है आचार्यों से, और अभी वन में भी चले गए हैं। 28 मूलगुण का पालन कर रहे हैं, निरतिचार पालन कर रहे हैं। आप क्या कहते भाई, वो मिथ्यात्व है, जो जो मिथ्यात्व है, कल हमने देखा था गुणस्थान, चार गुणस्थान तक तो असंयमी ही है। बाह्य में तो उन्होंने संयम अंगीकार किया है और दुनिया तो उनको संयमी ही कहेगी, परंतु कर्णान योग या भगवान उसको क्या कह रहे, क्या रूप से, किस रूप से जान रहे। देखो उनको धवला शास्त्र में भी कहा है वो द्रव्य यम कर रहे, संयम नहीं। संयम यानी सम्यक प्रकार से जो यम यानी नियम आदि पालते हैं, व्रत करते हैं, उनको संयमी कहा है। सम्यक दृष्टि के जो व्रत आदि होते हैं उसको संयम कहते हैं, और जो मिथ्या दृष्टि अवस्था में जो व्रत आदि धारण करता है, नहीं करना ऐसी कोई बात नहीं है, कर सकते हैं, परंतु उसको क्या कहा, द्रव्य यम यानी वो व्रतों की क्रिया कर रहे हैं। जैसे गिनीज रिकॉर्ड में आप कुछ भी क्रिया सीख जा सकते हैं ना, वैसे ये क्रियाएं हो रही है, परंतु उसको संयम नहीं कहते। संयम तभी नाम दिया जाता है जब सम्यक दर्शन आत्मानुभूति होगी और उसके बाद व्रत धारण किया, क्योंकि पहले में पहले ऐसा ही रास्ता है कि मार्ग पर चलते हैं तो पहले सम्यक दर्शन होता है और फिर व्रतादि का अंगीकार। व्रत उनके तभी सच्चे कहलाएंगे कि जब अंतरंग में आचरण है, तब उनके बाह्य जो उनके आचरण है उसको व्रत ऐसी संज्ञा दी जाती है। तो मिथ्या दृष्टि को इतने, इसलिए प्रश्न पूछा, जो जो मिथ्या तो गुणस्थान वाले हैं, दूसरा गुणस्थान, तीसरा गुणस्थान, चौथा भी गुणस्थान, वो तो अभी सम्यक दृष्टि है, फिर भी देखो ऐसा नियम है कि जो ऊपर के गुणस्थानों में जाते हैं ना, जब भी मुनि होने वाले हैं, सातवें गुणस्थान में अभी पहुंचे नहीं है, तो चौथे गुणस्थान वाला ही उसके ऐसे वैराग्य के परिणाम होते हैं कि वो दीक्षा अंगीकार करता है। अभी सातवां गुणस्थान नहीं प्रकटा है, दीक्षा लेकर वो ध्यान में एकाग्र हो जाएगा या परम पारिणामिक भाव में है, तो सम्यक दृष्टि, बाहर दीक्षा भी ली है, फिर भी अभी उनके भावलिंगी मुनि नहीं कहेंगे उनको। जब अंतरंग में स्थिर होते हैं, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, वीतरागता बढ़ती है, तब हम उनको सातवें गुणस्थान वाले कहेंगे, फिर वो छठा सातवां चलता रहेगा। तो ये मिथ्यात्व गुणस्थान में उनके ये औदयिक भाव में, भले बाह्य में उन्होंने संयम अंगीकार किया है, लोगों को तो वो संयमी दिख रहे हैं, परंतु उनके असंयम भाव है। उनके जो ज्ञान है उसको कौन सा ज्ञान कहेंगे, सूद ज्ञान के कूद ज्ञान, कूद ज्ञान, भले 11 अंग और 9 पूर्व का पाठी हो तो भी। देखो हमें तो शास्त्र के अनुसार उसका बरोबर जानना चाहिए, यानी बहुत ज्यादा जानता है इसलिए वो ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं है। आत्मज्ञानी ही ज्ञानी है, आत्मज्ञान के बिना जो अन्य ज्ञान है उसको तो अज्ञान कहा है। जब तक वही ज्ञान अभी ज्ञान कहलाएगा, पहले भी शास्त्र का ज्ञान था, मान लेते हैं उसने 100 ग्रंथ पढ़े थे और आत्मज्ञान नहीं था तो उसको अज्ञानी कह रहे थे। अब ये 100 ग्रंथ का ज्ञान तो है उसके पास, अभी उसने आत्मा का अनुभव कर लिया, वो आत्मज्ञानी हो गया, तो उसको पहले वाले ही ज्ञान को हम अभी क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। ख्याल में आया ना, उसके क्या बाह्य ज्ञान में थोड़ी कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो इस तरह से हमें निर्णय करना चाहिए। देखो
अगर आप मुनि महाराज का तो, आपको तो पता नहीं होता उनका सम्यक दर्शन है नहीं, तो आप तो वैसे ही समझेंगे क्योंकि ये सम्यक दर्शन मुनि महाराज है, उनका शास्त्र का ज्ञान है, उनका बाहर का जब देखे तो लगेंगे वैसे, तो यू डोंट नो।
बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हाँ
सच्चे मुनि
है। हाँ देखो देखो देखो, आपका ऐसा प्रश्न है, जो हम मुनिराज को देखते हैं और उनका बाह्य व्यवहार देखते हैं, उनका संयम देखते हैं, उनका ज्ञान देखते हैं, तो हम तो ऐसे ही समझेंगे वो सच्चे है। वो सच्चे है कि नहीं है ये हमको कैसे समझ में आवे। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा है ना, हम उनको क्या देख सकते हैं, उनका आचार ठीक है कि नहीं देख सकते। बाह्य आचार देख सकते हैं कि नहीं, वो बाह्य आचार कैसा है उनका ये देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, वो कैसे चल रहे हैं, ये मौन से आगे देखकर चल रहे हैं क्या गप्पे लगाकर इधर उधर देखकर चल रहे हैं, जिसको हम एरिया समिति पूर्वक चल रहे कि नहीं चल रहे, ये देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। उनके जो यानी आहार संबंधी नियम है वो पालते हैं कि नहीं पालते, ये आपको देख सकते हैं कि नहीं देख सकते। जैसे उद्दिष्ट आहार का त्याग होता है, उनके लिए किसी ने बनवाया है और बुला करने ने आज हमारे यहां आना और वो जाते हैं, तो ये उनका उद्दिष्ट आहार नहीं हुआ, तो ये उनका भंग हो गया, उसका 28 मूल गुणों में भंग हो रहे उनके। यदि वो शिथिलाचार का पोषण कर रहे हैं, अभी उसमें तो बहुत सारी बातें हैं ना, तो यह हमें जानना जरूरी है। ये पांच महा उद्दिष्ट आहार में ऐसा दोष है कि मेरे लिए मैं आपको कहूं कि बेन कल मुझे मैं आपके यहां आहार को आऊंगा ये बनाना, या पता भी चला कि इन्होंने मेरे लिए सारा है और मैं उसको स्वीकृति दूं, तो जो कृत कारित और अनुमोदना तीनों का समान पाप होता है। तो मुनि कैसे है, षटकाय जीवों के हिंसा का त्याग है उनको, कल हमने देखा था, तभी तो हम उसको मुनि कहते हैं। एक त्रस और पांच स्थावर का है, तो एकेंद्रियों के भी हिंसा का त्याग है, और हम जो भोजन बनाते हैं, आहार बनाने की जो विधि है, चूल्हा जलाना है और कुछ है, बुहारी लगाना, बर्तन साफ करना, उसमें जो हिंसा होती है वो हम श्रावक तो वो हिंसा को टाल नहीं सकते हैं, हमसे तो हिंसा होती है, परंतु यदि मुनिराज उद्दिष्ट आहार करते हैं तो ये सारे हिंसा को अनुमोदना देने का पाप उनको लगता है और उनकी मुनि अवस्था नहीं रहती, वो होगा तो भी वो नष्ट हो जाएगी। तो क्योंकि वो अहिंसा के महाव्रतधारी है और उन्होंने जो अहिंसा महाव्रत धारा है, उसीलिए पांच समिति का पालन करते हैं कि आगे चार हाथ जमीन देखकर चलना, मौन से चलना, सूर्योदय होने के बाद चलना और सूर्यास्त होने के बाद नहीं चलना। अभी उसमें तो कितने होते हैं, और जो श्रावक होते हैं लौकिक जनों से ज्यादा बातचीत भी नहीं करते वे, क्योंकि उनके तो क्या होता है कि आत्म ध्यान और ज्ञान इसमें तो लीन रहते हैं। तो ये उनके अगर हम बाह्य आचार देखते हैं तो वो सही है कि नहीं, इसलिए हमें 28 मूल गुण क्या है ये भी मालूम होना चाहिए, और उसमें दोष लगते हैं कि नहीं लगते ये देखना श्रावक का कर्तव्य है, क्योंकि जिन्हें हम मुनिराज मान रहे हैं उनके बाह्य ही आचार देखने हैं। अब ऐसे कोई मुनिराज हो कि बाह्य आचार बिल्कुल तंतोतंत है तो हमें उनको वंदन भी करना चाहिए, भले सम्यक दृष्टि पांचवें गुणस्थान वाला जीव हो तो भी उसका कर्तव्य है कि मुनि के बाह्य आचार यथा योग्य हो तो उसको नमस्कार करे, वंदन करे, उनको आहार विधिपूर्वक आहार दे, ये श्रावक का कर्तव्य है। परंतु यदि उनके आचरण में कहीं खोट आती है, कोई दिखाई देती है, तो वो मुनि नहीं है ऐसा स्वयं निर्णय कर सकते हैं। उनका गुणस्थान देखने की यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी श्रावक की इतनी ही है कि उनका बाह्य आचरण यथा योग्य है कि नहीं है, यथा योग्य है, और यदि हम उनको वंदन और आहार वगैरह नहीं देंगे तो ये हम अपने कर्तव्य से चूक रहे हैं। हम तो गुणस्थान देखना ही नहीं, क्योंकि वो तो भगवान केवल केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है, समझ में आता है ना। तो हमें तो वो बाह्य आचार, क्योंकि हम नमस्कार करते ये हमारा व्यवहार है, तो वे उनके व्यवहार को देखकर हमारा उनके प्रति वंदन आदि होता है। ये जो आहार दान वगैरह क्रिया जो है विधिपूर्वक देना चाहिए, बिल्कुल वो भी नवधा भक्ति पूर्वक देते हैं ना, ये श्रावक का कर्तव्य है। परंतु जहां कोई खोट दिखाई देती है तो हट जाओ उसमें, अभी वो दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है, हमारी मान्यता कहीं उसमें चोट नहीं लगती ये हमें देखना है, क्योंकि हमें मुनि का यानी देव का, मुनि का यानी गुरु का, यहां जब गुरु कहते तब मुनि समझना, जब देव गुरु शास्त्र वाले जो गुरु की बात आती है तो गुरु यानी मुनिराज छठे सातवें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संत, उनको यहां मुनि कहते हैं। जो हमें स्कूल में सिखाते उनको भी हम गुरु या गुरु जी कहते हैं, जो हमें ज्ञानी अन्य भी चौथे पांचवें गुणस्थान वाले भी जीव है उनको भी हम गुरु कहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अध्यात्म पढ़ाया है, परंतु वो देवशास्त्र गुरु वाले गुरु नहीं कहलाएंगे। जब देव गुरु यानी मुनि और शास्त्र की बात आती है तो उनके तो वंदन भी करना चाहिए, अष्टद्रव्य से पूजनीय होते हैं, परंतु चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती जीवों की कोई आरती उतारे और पूजा करे और अर्घ्य चढ़ाए तो ये तो चरणानुयोग के द्वारा वो मिथ्यात्व है, गृहित मिथ्यात्व कहलाता है।
ऐसे कोई मुनि है जो मतलब अभी इस समय में कि जो कि सम्यक दृष्टि भी हो और आपने जितने गुण बताए उन सबका पालन कर रहे
हैं? पालन करने वाले मुनि होते हैं और ऐसे मुनिराज पांचवे आर्य के अंत तक हो गए, ऐसे आगम का वचन है। देखो हम तो पूरी दुनिया को नहीं जानते हैं, ऐसा है ना। अभी आपको पता था कि यह इंडिया में भी कोई ऐसे, जब तक हम अभी हमारी बात करेंगे, हम नहीं आए थे तो आपको पता था कोई वहां रह रहे हैं बम्बई में, और बम्बई में भी ऐसा स्वाध्याय चलता है। अभी हमारे यहाँ धवला ग्रंथ का अभ्यास चलता है, धवला ग्रंथ तो पढ़ने यानी देखने को भी मुश्किल है, नाम भी किसी ने नहीं सुना है, तो इसका स्वाध्याय चलता होगा और 15-20 लोग डेली सालों से आ रहे हैं, या करणान योग का अभ्यास हमारा 10-15 साल से लगातार रोज 1.5 घंटा चलता है, किसको पता होगा? जो हमारे परिचित है, जो हमारे कॉन्टेक्ट में आए, उनको पता चलेगा। समझ में आता है? तो ऐसी कितनी बातें, तो अभी पूरा हिंदुस्तान भी कितना बड़ा है, और हिंदुस्तान इतना ही बड़ा क्षेत्र नहीं है, तो कहाँ क्या है हम रिफ्यूज तो नहीं कर सकते, हम सर्वज्ञ तो नहीं हो गए हैं, और ऐसे मुनिराज भी दिखाई देते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। अभी हमारे भाग्य होते हैं तो दिखाई देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और उनको पहचानने के लिए हमें भी शास्त्र का अभ्यास चाहिए कि ये 28 मूल गुण है और इसका पालन इस तरह से होता है और इस विधि से आहार भी दिया जाता है, ये तो ये हमारा पहला कर्तव्य है। और ऐसे मुनिराज भी होते हैं। हाँ,
श्रावण श्रावक की आत्मा को भी आगे तो बढ़ना ही है।
हाँ,
तो जो भी मुनिराज है उसमें भी थोड़ा अवगुण है वो है, लेकिन श्रावक को भी आगे बढ़ना है।
हाँ,
तो ऐसे हम लोग नहीं पहचान सकते कि ये मुनिराज को मत अपना वो आप घर पे बुलाओ और खाना दो और तो हम लोग पीछे हो जाते हैं। तो वो तो अच्छा नहीं हुआ हमारे आत्मा से।
देखो आपका
तो
ऐसा
मुनिराज के भी डिग्री होगी, लेकिन श्रावक को मुनिराज बनना है ना।
हाँ बरोबर, आपका ऐसा प्रश्न है, हम श्रावक है, हमें भी अपने आत्मा को आगे बढ़ाना है, और जो मुनिराज है उनमें भले ऐसी अलग अलग वैरायटी होगी और हमें उनका आदर करना चाहिए। और क्या कहते हैं
वो जो कुछ भी है, जैसे आपने बताया कि वो अभी खाना पकाते हैं, डिफरेंट मुनिराज के लिए ऐसा यू नो हम संभाल के बर्तन बराबर क्लीन करते हैं और सब यू नो उसका दोष मुनिराज को लगता है, लेकिन जब हम बनाते हैं हम बुलवाते हैं तब हमने नहीं बराबर बनवाया और घर पे क्लीन किया तो उसका दोष हमें लगा।
नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो देखो आपका प्रश्न मुझे ख्याल में आया। आप कहते हैं यदि हमने बराबर क्लीनलीनेस नहीं किया और क्लीन नहीं किया और तो उन हमने मुनि को अच्छा आहार नहीं दिया तो हमें दोष लगेगा, ऐसा कहना है ना आपको?
हाँ, श्रावक को आत्मा को भी आगे बढ़ना है।
हाँ, तो मुझे आपका प्रश्न समझ में आया है। आप कहते कि हमें तो मुनिराज को आहार देना है और वो क्लीनलीनेस वगैरह भले हमें दोष लगता है तो हमें आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए क्योंकि हमें भी मुनि बनना है। बराबर है, जो जिस भूमिका में है उस भूमिका का उसको पालन करना चाहिए। मुनियों को जो आहार दिया जाता है उसकी एक कंडीशन ऐसी है कि श्रावक अपने स्वयं के लिए शुद्ध भोजन बनाता है और उस शुद्ध भोजन में से ऐसी जो उसका जो समय है खाने का समय है उसके पहले वो दरवाजे पर जाकर खड़ा होता है और मुनि के आगमन की राह देखता है। मुनिराज का ऐसा नियम होता है कि विशिष्ट समय वो निकलते हैं आहार के लिए और जो श्रावक घर के बाहर ऐसे वो मुनि को पधराने के लिए स्वयं खड़े होते हैं। मुनिराज कभी किसी के जाके डोरबेल नहीं बजाते, ऐसा उनका वो सब 28 मूल गुण में ये बातें आती है और वहां श्रावक खड़े रहते हैं और मुनिराज जब मंदिर में से निकलते हैं आहार के लिए, क्योंकि बाहर वन में रहते हैं, गांव में आते हैं, मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और वहां से मन में कोई ऐसी बात निश्चित करके निकलते हैं कि मैं ऐसे कोई जो जोड़ी से खड़ा हुआ हो या कोई सफेद वस्त्र में खड़ा हुआ है या कोई हाथ में नारियल लेके खड़ा हुआ है या कोई ऐसे कोई भी अटपटी ले लेते हैं जैसे आपको मालूम है। हाँ, अभिग्रह संकल्प लेके निकलते हैं, ऐसा होगा तो मैं जाऊंगा क्योंकि आहार की इच्छा तो उठी है, परंतु जितने वो अधिक तप होते हैं उनके अधिक अटपटे ऐसे नियम लेके निकलते हैं कि जो आहार का वो विकल्प तो आया है, निकले तो सही परंतु और मिलना है ना हर, तो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बन जाता है कि उनके विकल्प के अनुसार उनको मिल जाता है, और नहीं मिले तो बस वो समय चूक गया और वो निकल जाते हैं, उस दिन उनका आहार नहीं होता। परंतु वो मन में कोई पकड़ा है और ऐसा संकल्प किया और कोई नहीं मिले तो चलो अभी संकल्प बदल दे, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे महावीर की आपको बात मालूम है, महावीर जब भी मुनिराज थे तभी उन्होंने क्या संकल्प किया था, ऐसे कोई व्यक्ति मिले, कोई महिला हो क्यों जो सिर मुंडवाया हो और हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो उनके ये कितनी अटपटी थी, कोई स्वयं ऐसे होगी कि पॉसिबिलिटी कितनी रेयर थी। फिर भी यदि आहार मिलना हो तो ये सभी पॉसिबिलिटीज वो ऐसे अपने अपने योग्यता से हो जाती है। जब रामचंद्र जी और सीता वनवास में थे तो वहां एक मुनिराज ऐसे ही आहार को निकले थे और उन्होंने भी ऐसा संकल्प किया, कोई मिट्टी के बर्तन में खाना पका के मुझे दो तो मैं ग्रहण करूंगा, नहीं तो ये नहीं करूंगा। तभी ये भी वनवास में थे तो क्या करे, वहां तो डेली तो घूमना ही था, तो वहीं मिट्टी से तवा आदि कुछ बनाए होंगे बर्तन और उसमें कुछ रांधा होगा, और भोजन का समय अपना हुआ तो मुनिराज आते हैं कि दर्शन के लिए वहां इंतजार में खड़े थे, और सहज रूप से उनको मुनिराज के दर्शन हुए और आहार दान का लाभ मिला, और मुनियों को आहार मिलना था तो उनको मिल गया। ये ऐसे सहज निमित्त सहज होते हैं, परंतु ये मुनि का स्वरूप हमें निश्चित करना है अपनी श्रद्धा में। मुनिराज ऐसे होते हैं इतना हमको जानना है, सामने वाला कैसा है इसकी बात हमें नहीं करनी, एक बात। और सामने वाला कैसा भी मुनिराज हो और हम उनको सच्चे मुनि जैसा उनके साथ व्यवहार करें तो ये तो अवर्णवाद हुआ। सामने कैसे भी देव की हमने चित्र रखा हो या प्रतिमा रखी हो और हम जाके उसको वंदन करें तो हमने ये सच्चे देव का अभिनय किया, ये श्रद्धा का दोष श्रावक को लगता है, ये श्रावक का कर्तव्य है। बिल्कुल नहीं करना, किसी व्यक्ति की निंदा नहीं करना, अरे ना मुमुक्षु की करना है ना अन्य कोई, वो तो भूले भटके जीव है, वे द्वेष नहीं करना है उनका, वो करुणा के पात्र है।
लेकिन वंदन नहीं करते मतलब उसका निंदा ही और ऐसा
नहीं, नहीं नहीं, जब वंदन मुनिराज मानकर वंदन करते हैं तो ये श्रावक उनको मुनि मानकर वंदन कर रहे हैं क्या, माँ बाप मानकर वंदन कर रहे हैं? देखो यहाँ धर्म की भूमिका में हम उनको मुनि मानकर वंदन करना अलग बात है, और ऐसे हमारे कोई रिलेटिव भी हो या अन्यमति भी हो और राजा हो तो राजा को नमस्कार, वो मुसलमान भी हो और उसको नमस्कार करे तो दोष नहीं है, क्योंकि उसको राजा मानकर हम नमस्कार कर रहे हैं। और घर में हमारे माँ बाप है उनको नमस्कार, क्या सम्य दृष्टि जी अपने माँ बाप को वंदन नहीं करेगा, और उसके माँ बाप मिथ्या दृष्टि हो तो? परंतु उनको गुरु मानकर वंदन नहीं कर रहा है, माँ बाप मानकर वंदन कर रहा है। बड़ों की विनय करना अच्छा बात है, और यहाँ भी कोई गुरु है तो उनके साथ थोड़ी आपको द्वेष करना है, उनके साथ वाद करना है, बस आप मुनिराज मत मानो, ये बात है। ये मानने का यानी श्रद्धा का दोष हो रहा है यहाँ।
तो कौन से रिलेशन में वो वंदन करना चाहिए? आप बताते हैं कि मुनिराज है, चलो 28 गुण्स नहीं है, 27 हमने मान लिया, लेकिन हमको मालूम है सभी कम्युनिटी ने यहाँ आपको मुनिराज बनवा दिया,
हाँ,
और हम नहीं वंदन करते, वो भी अच्छा तो नहीं है ना?
हाँ, तो आप नहीं वंदन करते हैं तो क्या होगा? समझो 50-100 लोगों ने वंदन किया और आप अकेले नहीं वंदन, मेरी बात करेंगे, आपकी बात छोड़ो, कि यहाँ 100 लोग हैं और 100 लोगों ने नमस्कार किया और मैंने नहीं किया तो क्या होगा? हाँ। क्या होगा?
वो अच्छा तो नहीं,
वो मुनिराज गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे?
नहीं
नहीं, मुनिराज क्योंकि वो जो है, जो कोई मुनि बनना चाहते हैं उनके तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, गुस्सा आता है तो वो तो और भी जितने स्टेज पर है उससे भी नीचे के स्टेज पर सिद्ध होते हैं। तो अभी मुनिराज को तो गुस्सा नहीं आया, परंतु नीरेन भाई को गुस्सा आया समझ लेते हैं, तो उनको गुस्सा नहीं आवे या समाज मुझको क्या कहेगा, मैं अगर वंदन नहीं करूं तो ये 100 लोग मुझे क्या कहेंगे, ये भय से नमस्कार करना, ये कोई उसमें से निकाल देते कि अष्ट पाहुड़ में कुंदकुंदाचार्य ने लिखा है, आशा से, स्नेह से, भय से, लोभ से जो कुगुरु की वंदना करता है, पूजन करता है, उनका आदर करता है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। ये तो हमें अपने श्रद्धा को संभालना है, क्योंकि ये तो समाज के बाहर तो हम कभी नहीं रहेंगे और कुगुरुओं से रहित ये संसार कभी नहीं होने वाला।
सवाल ये है कि मतलब जो सुगुरु हैं और जो सही देव हैं उनको कैसे पहचाने?
हाँ, उसके पहचानने के लिए हमें खुद उसके ये स्वाध्याय करना होगा, उनके पहचान के चिन्ह पहचानने होंगे, उनके लक्षण जानने होंगे। ये तो हमारा कर्तव्य है। जैसे आपको हीरा खरीदना है तो चाहे जिसके पास से आप खरीदोगे क्या? कोई कांच टपका देगा आपके हाथ में। सोना खरीदना है और पीतल आपको दे दे, पैसे तो
हुआ कि आप अपने गुरु की परीक्षा ले रहे हो।
बिल्कुल करना चाहिए। जैन धर्म परीक्षा प्रधान है, गुरु की क्या, देव की परीक्षा करनी चाहिए। आचार्य समंतभद्र हुए थे, उन्होंने तो देवागम स्त्रोत्र लिखा है, यानी तत्वार सूत्र पर पूरा एक टीका लिखी थी, परंतु उसका मंगलाचरण पर जो टीका है उसका नाम है देवागम स्त्रोत्र। तो उन्होंने देव को बता दिया क्या, हे भगवान, मैं तुम्हें इसलिए नमस्कार नहीं करता हूं कि सारे देव नभोयान यानी वो आकाशयान वो तो उनके सारे विमान लेकर आते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, इंद्र सारे अपना वैभव के साथ आ रहे, इसलिए मैं नहीं आपको वंदना करता, इतके लोग आपको मानते इसलिए नहीं मैं आपको वंदना करता। तो उनको क्यों वंदना, ये ऐसे पूरा उन्होंने पूरा श्लोक यानी ये लिखा है देवागम स्त्रोत्र।
पॉइंट जो बार बार आता है इसी संबंध में,
हाँ,
तो 28 मुल्कों की बात चल रही है कि अच्छा हमको 28 तो नहीं है, 25 है, तो हमसे तो अच्छे है ना।
हाँ, 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 आपका प्रश्न ऐसा है 28 नहीं मगर 25 है, वो तो हमसे अच्छा है ना? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऐसा ये समंतभद्र आचार्य ने ही ये रत्नकरण श्रावकाचार में लिखा है कि ऐसे मोही मुनि से मोह रहित जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ अच्छा है, ऊपर के स्टेज पर है, तो वो तो जाएगा भी नहीं ऐसे मुनि के पास, क्योंकि वो मोही मुनि है। देखो, हाँ देखो, ये अष्टपाहुड़ मोक्ष पाहुड़ में लिखा है, कुच्छिय देवम धम्मम कुच्छिय लिंगम च वंदये जोदु लज्जा भय गारवदो मिच्छा दिट्ठी हवे सोहु। जे कोई लज्जा भय अने मोटाई थी, पण हम बड़े हैं ना इस समाज में, हम सबसे मुखिया है, तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमने वो समाज यहाँ के हम बड़े हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि जो कोई आवे उनका हम सत्कार करें। को मोटाई थी पन कुत्सित देव, कुत्सित यानी कुदेव, कुत्सित यानी जो है ही नहीं है परंतु जो कहते हैं। देखो, कुदेव नाम के कोई देव होते ही नहीं है क्योंकि ये देव संबंधी किसी जीव ने मिथ्या कल्पना कर दी है। ये लक्ष्मी वगैरह के फोटो आते हैं ना, ये कोई वो रवि वर्मा के कोई एक चित्रकार हुआ था, किसी मॉडल को लेकर उसने वो लक्ष्मी संबंधी कल्पना से चित्र किए और अब इतने प्रसिद्ध हुए कि घरों घरों में वो लक्ष्मी के फोटो होते हैं, फिर उसकी पूजा की जाती है, उसको हार डाला जाता है। ये थोड़ी लक्ष्मी देवी है, ख्याल है ना? तो ऐसे ये किसी अज्ञानी के कारण ये बहुत ऐसे उसमें चेंजेस होते हैं और ऐसे मान्यताएं चलती है। ऐसे कोई जीव है ही नहीं है कुदेव जैसे, कोई अदेव भी होते हैं। नाम सुना है अदेव में, यानी जो देव नहीं है। अभी जो कोई वड की पूजा करता है, पीपल की पूजा करता है, वृक्षों की, नदी की पूजा करता है, समुद्र की पूजा करता है, पत्थर की पूजा करता है, अरे ये पंचेंद्रीय जीव, और वो एकेंद्रीय की पूजा करता है, इसके ज्ञान यानी कहां मूर्ता चल रही है इसको, ख्याल में ना? ये रत्नकरण श्रावकाचार पढ़ना, आचार संबंधी पूरा शास्त्र है, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से विस्तार से समझाया है। ये लोक मूर्ता क्या है, देव मूर्ता क्या है, देव संबंधी अपनी मूर्ता, देव में मूर्ता नहीं है, देव संबंधी हमारी जो मिथ्या भ्रामना है, मूर्खता है, गुरु संबंधी हमारी मूर्खता है, लौकिक जो है, अभी ये दीवार ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, वो उसको ऐसे सीधा करो, इधर का वो, ये हिंदुस्तान में अभी बहुत चल रहा है वास्तुशास्त्र।
आपने अभी बोला कि वो कोई जो देव की परीक्षा कर रहे थे
मुनिराज, हाँ,
कौन से देव की परीक्षा कर रहे थे वो?
नहीं, देव की परीक्षा कर रहे थे यानी उनको देव का स्वरूप लोगों को बताना है ना, ये न्याय शास्त्र ऐसे होते हैं कि देव का ऐसा स्वरूप है, इसलिए उन्होंने ऐसे स्तोत्र रचे हैं कि हे देव, मैं आपको इसलिए नहीं नमस्कार करता, किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, अरिहंत भगवान को कह रहे हैं कि हे भगवान, तीर्थंकरों को कह रहे हैं, हे भगवान, आपको मैं इसलिए नमस्कार नहीं करता हूं कि देव अपने विमानों से आकर आपका समोचरण की रचना की है या क्यों आपको नमस्कार करते हैं, क्योंकि ये रचना मायावी भी कर सकते हैं। देवों में वैकरिक रिद्धि होती है, तो देवों ने तीर्थंकरों के लिए समोचरण रचा, तो कोई अन्य देव होगा मिथ्या दृष्टि, वो ऐसे काल्पनिक भी रचना कर सकता है, वो कुछ इम्पॉसिबल बात नहीं है। समझ में आया? तो ये क्यों हम नमस्कार करते हैं कि वहां जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य गुण प्रकट हुए हैं, इसलिए हम भगवान को नमस्कार करते। हम भगवान को नमस्कार करते क्योंकि वे वीतरागी और सर्वज्ञ है, इसलिए नहीं कि उनके इतने सारे खम्बा कर रहे हैं और इंद्र आते हैं उनकी पूजा करते हैं, समोचरण की रचना करते, इसलिए नहीं हम नमस्कार करते। वे होते हैं, तीर्थंकरों की ये बातें होती है, परंतु वो उनके गुण नहीं है। हम उनको देह की तरफ देखकर भी नहीं नमस्कार करते, हम क्यों, उनके आत्मा में इतना विकास हो गया है तो इसलिए उस वितराग विज्ञानता को हम नमस्कार करते। देखो ये बातें समझने जैसी है, क्योंकि हमने कभी सुनी ही नहीं ना, और हमें ऐसा लगता है वो अपने से तो बड़े हैं ना। ये परीक्षा प्रधान है जैन धर्म, देव की परीक्षा करो, गुरु की परीक्षा करो, शास्त्र भी परीक्षा करके सुनो, पढ़ो, क्योंकि शास्त्र भी उसे ही कहते हैं जो अरिहंत भगवान ने बताया हो, जो पूर्वापर विरोध से रहित हो, जिसमें कहीं हिंसा आदि का पोषण नहीं है, कहीं राग का पोषण नहीं है, पुण्य करते रहो तुम्हारा धर्म हो जाएगा ऐसा कथन हो, तो शास्त्र नहीं है, वो शस्त्र है, क्योंकि हमारा घात हो रहा है उससे, हमारी मान्यता बिगड़ रही है उसमें, अभी क्या करें। ये सभी बातें तो है, ये रत्नकरण शाकाचार नहीं पढ़ा हो तो जरूर पढ़ना, अतुल जी सबके लिए मैं कहूंगा, अभी अतुल जी का नाम लिया इसलिए उसको अकेले को नहीं पढ़ना है। और बहुत आसान है, अत्यंत सरल है। तो देखो क्या कहते, जे कुत्सित देव धर्म और लिंग ने, लिंग ने साधु लिंग, उसको लिंग कहते, वंदन करे छे ते मिथ्या दृष्टि छे, माटे जे मिथ्यात्व नो त्याग करवा इच्छे छे, जो चाहो अपनो कल्याण। और अभी भटकना है और अनंत भव करना है तो जो चाहो आप कर सकते हैं, मार्ग खुला है ना, कौन किसको क्या रोकेगा। ते प्रथम अज यानी सबसे पहले में पहली कंडीशन, कुदेव कुगुरु कुधर्मनो त्यागी थाय, उसका त्याग करना है, उसको छोड़ जाना ना, वहां क्या आपको पकड़ के उसने बताया कि मुझे नमस्कार करो। सम्यक्त्व ना 25 मर्दोषो ना त्याग मापन अमूर दृष्टि, वह 6 आयतन मापन तेनोज त्याग करावे छे। आयतन यानी स्थान, धर्म के जो स्थान है, और जो धर्म के स्थान नहीं है उसको अनायतन कहते हैं। ये जो स्थान नहीं है ऐसे कौन है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र, और ये तीनों के भक्त फॉलोअर्स, इनका त्याग करो कहा है। सम्यक दृष्टि के लिए त्याग में योग्य है, माटे तेनो अवश्य त्याग करवो। वळी एक कुदेवादिना सेवन थी जे मिथ्यात्व भाव थाय छे, ते यानी जो मिथ्यात्व भाव है वह क्या है, हिंसादि पापों थी पण महान पाप छे। किसी ने 25-30 खून किए हो तो उसको क्या कहेंगे हम, या जो हिटलर ने इतने सारे जीवों की हत्या कर दी, ये उनके कैंप कैसे कैसे थे मालूम है ना, हमने सुना है बहुत, तो वो कितना पापी था। यहां क्या लिखा है, हिंसादि पापों से भी महान पाप मिथ्यात्व है। अब ये मिथ्यात्व नाम का पाप बाहर से तो दिखाई नहीं देता है, उसमें पाप है ये पता ही नहीं चलता है, तो उसको तो सब क्रूर कहेंगे, या सिंह है जो सबको हरणों को फाड़ कर खाता है उसके तो क्रूर परिणाम दिखाई देते हैं, परंतु उस पाप से भी मिथ्यात्व का पाप महान है। कोई भी सात व्यसन कहो या हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में से कोई भी पाप हो, इन सभी पापों का तो वो महापाप है मिथ्यात्व नाम का पाप। खोटा अभिप्राय, खोटी श्रद्धा, देवगुरु संबंधी छोटी मान्यता, कारण के एना फलती, किसके फल से, मिथ्यात्व के फल में निगोद नरकादि पर्याय प्राप्त थाय छे। निगोद का स्वरूप हमने देखा, ये अभी निगोद नरक में जाएगा, वहां से आएगा पशु होगा और फिर कालांतर से निगोद में चला जाएगा। मिथ्यात्व के साथ पुण्य भी करेगा कोई, मिथ्यात्व चल रहा है अभी उसके साथ पुण्य के भी कोई संयम भाव कर रहा है, कोई अन्य भी पुण्य परिणाम कर रहा है, परंतु मिथ्यात्व का बड़ा पाप चल रहा है, और थोड़ा बहुत जो पुण्य करता है, व्रत उपवास आदि करता है, दूसरों को हेल्प करता है, बहुत भला जीव है, फिर भी यानी वो हमने जो देखा था द्रव्यलिंगी वो मुनिपन बना है, पुण्य तो कर रहा है ना, स्वाध्याय भी कर रहा है, परंतु मिथ्या तो तीव्र मिथ्या तो भी चल रहा है कि ये शरीर की क्रिया मैं करता हूं, ऐसी मान्यता चल रही है उसकी। पुण्य करने करते करते मोक्ष होगा ये मान्यता हो रही है, और वो भी अन्य कुदेवादिकों को भज रहा है, मान लेते हैं द्रव्यलिंग को छोड़ो, बहुत पुण्य कर रहा है और कुदेवादि को भज रहा है, तो वो उसको कहां का रास्ता है, एकाध भव स्वर्ग का मिलेगा, फिर कहां चक्कर चलेगा, थोड़े भव करके निगोद में चला जाएगा। क्या अनंत काल सुधी, थोड़े काल के लिए नहीं, अनंत काल, निगोद 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 चलता रहेगा अनंत काल सुधी। महासंकट पामे छे, अत्यंत तीव्र संकलेश भावों में महादुखी होकर वहां काल बिताता है, अनंत काल तक वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तथा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति पण महादुर्लभ थी जाए छे, जो कुदेवादि के बाद है। अभी आगे का भव किसने देखा, तो नहीं देखा, परंतु ये भव तो है ना, तो इस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो गृहित मिथ्यात्व चल रहा है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पीछे चल रहा है। आगे भी बहुत है उसमें, अभी क्या कहें, ये छठे अधिकार की बात चल रही है। देखो ये जो हमने अभी देव रत्नकरण शावकाचार लिखा है ना, तो वो तो समन्त भद्रा आचार्य ने बहुत पहले लिखा हुआ है, तो हजारों साल तो उसके हो गए, परंतु उसकी जो टीका लिखी है वो तो हाँ सदा सुखदास जी ने, उसको भी 300 साल जितने करीबन हो गए या थोड़े कम इधर उधर हो गए, वो ढूंढारी वगैरह भाषा में है, तो उन्होंने ये बात लिखी है। देखो हमें तो पता ही नहीं, और अष्टपाहुर तो 2000 वर्ष पहले लिखा कुंदकुंदाचार्य ने, कुंदकुंदाचार्य ने जैसे समय सार लिखा है, प्रवचन सार, नियम सार, पंचार्षिक है, वैसे अष्टपाहुर ग्रंथ भी उनका है, उसमें से अभी हमने पढ़कर सुनाया था प्राकृत गाथा। लोगों को ऐसी ही भ्रमणा होती है ना, देखो अभी 2 मिनट एक बात बताती हूं कि अरिहंत तो सिद्ध का स्वरूप भी जानते नहीं है और कुछ क्रिया करना चाहते। हमारे पास एक बहुत वयोवृद्ध गृहस्थ आए थे, नासिक के थे, 87 ईयर्स के, और उन्होंने एक दो पुस्तकें पढ़ी थी, जैन तत्व परिचय और करणानियोग परिचय, तो कहीं कहीं से एड्रेस और फोन नंबर लेके फिर पहले फोन किया, फिर आ गए, मुझे आपसे कुछ चर्चा करनी है। 4-5 जन आए, उनके घर के कुछ फैमिली वगैरह, उन्होंने मुझे सुनाई नहीं देता है, उन्होंने बोला कोई हर्जा नहीं है, हमने वो माइक वगैरह लगाया, क्योंकि रोज को टेपिंग तो चलता ही है ना हमारे घर में, तो माइक लगाया और हम माइक पर बोलते थे, मगर उनका आवाज इतना ऊंचा कि बिना माइक के भी हम सब लोग अच्छे तरह से सुन सकते थे। तो उन्होंने बोला मैं सम्यक दर्शन के लिए ट्राई कर रहा हूं गए 4 साल से। बहुत अच्छी बात है, क्या कर रहे हो? तो मुझे कोई एक ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको सम्यक दर्शन दिला दूंगा, क्योंकि उनका ऐसा दावा है कि मैंने बहुत मुनियों को सम्यक दर्शन दिया है। ये गृहस्थ है, उन्होंने अनेक मुनियों को सम्यक दर्शन दिला दिया है। अच्छा, मैंने बोला आप क्या कर रहे हो सम्यक दर्शन के लिए? प्रयत्न तो करें ना, पुरुषार्थ करें। क्या करते हैं? मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और एक पूरा अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट तक क्या करता हूं? ओम नमः सिद्धेभ्यः, वो ध्यान करता हूं, सिद्धों का नामस्मरण करता हूं, पर अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मैंने बोला चाचा जी, आप सिद्धों का नाम तो लेते हो, क्या आपको सिद्धों का स्वरूप मालूम है? उन्होंने कहा उसकी क्या जरूरत है, क्या नाम लेने से कुछ बात होती है? जब हम सिद्धों को नमस्कार करता हूं तो सिद्धों में जो वितरागता और सर्वज्ञता है उसका स्वरूप अगर हमें नहीं भासित होता है तो सिद्धों का नाम लेने से क्या होगा? इमली कैसी होती है? खट्टी। इमली का नाम लेते ही यहां तो ये सलाइवा बाहर आता है अंदर से, क्योंकि हमें उस खट्टेपन का ज्ञान हो जाता है, और सिद्धों का नाम लेते तो यहां कुछ नहीं होता क्योंकि हमें उसका भावभाषण नहीं होता। ख्याल में आता है ना? तो ये ऐसी वो भ्रमणा चलती है। अभी और भी बहुत सारी 1.5 घंटे तक वो बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा यह पुस्तक पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, यही मुझे सच्चा मार्ग मिलेगा, इसलिए मैं आया हूं। वो तो उसकी कैसेट भी बनी है 1.5-2 घंटे की कैसेट क्योंकि ऐसे भी माइक चल रहा था, हमने कैसेट रख दी कि क्या क्या पूछने वाले थे कुछ मालूम भी नहीं था, तो बहुत सारी चर्चा हुई। ये ऐसा चलता है। लोग भोले हैं, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे धर्म तो करना है, कोई तो मुझे मार्ग बताएगा। जब सच्चा मार्ग समझते ये आए थे ना, पुणे में हम शिविर करते थे, वहां भी एक वयोवृद्ध आए थे 71 वर्ष के। जब 10 दिन उन्होंने सुना, ये सिद्धांत प्रवेशिका ही लेते जहां जाते, बोले ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं किसी ने बताई, मैं 71 वर्ष का हूं और जब से मुझे बचपन से याद है तब से मैं हर साल सिद्ध क्षेत्र में कहीं कुंतलगिरी या अन्य अन्य क्षेत्रों में जाकर रहता हूं, 10 दिन मौन पालता हूं, उपवास करता हूं, अनेक मुनियों के साथ रहा हूं, ये बात मुझे क्यों नहीं किसी ने कही। उन्हें बोला आपकी योग्यता नहीं थी। हमें ऐसा लगता ना, हमें निमित्त नहीं मिला इसलिए नहीं हुआ। तो हमें तो देव गुरु और शास्त्र का निर्णय करना ही चाहिए, वो तो अटमोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये औदयिक भाव से हम कहां चले गए, फिर भी ये कोई प्रयोजनभूत बातें है, ये बहुत आवश्यक बातें है। बाकी चर्चा हम दोपहर में करेंगे, अभी यहीं रुकते हैं।
एक छोटा सवाल है कि जो
बोलो 2400 भगवान की जय।